मैं बहुत देर से बोल भी रहा हूँ और जोर से बोलना तो जिस घर में ही वहाँ पर सही जोर से बोलना
दोपहर से
ही। इसलिए आज हम लोग समाप्त करते हैं, कल शायद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करने के बाद लौट रहे हैं पुरी में। उस समय में उनके साथ में भट्टाचार्य भट्टाचार्य और एक रसोई बना लिया अंदर दोनों उनके साथ में थे। महाप्रभु जी उनके साथ लौट रहे हैं वाराणसी में, प्रयाग में उनका भेंट हुई रूप गोस्वामी। वो वहां पर कुछ दिन रहे और रह करके उनको कुछ शिक्षाएं दी। वो वृंदावन में जब थे तो उस समय में सनातन गोस्वामी वहां नहीं आए। उनको पता चला राम टेलीग्राम से कि महाप्रभु गए, इसलिए वो लोग वहां से चल लिया। रूप गोस्वामी प्रयाग में पहुंचे और महाप्रभु वृंदावन से लौट करके उस समय आ रहे थे। तो प्रयाग में गंगा के किनारे यमुना के किनारे थे। चैतन्य महाप्रभु जी स्वरूप सनातन के ऊपर में इतने कृपालु थे कि पूरी से कोई जाता वृंदावन तो उनको वो पूछते थे, यदि कोई वृंदावन से आता तो उनसे पूछते केह यदि जाए देखी वृंदावन सारे प्रश्न करें प्रभु पारित उनको देख करके वृंदावन वाले को देख करके महाप्रभु के जो परिकर थे उनसे पूछते कौन परिकर और दामोदर राय रामानंद इत्यादि पूछते उन लोगों को कहो कहा कैसे रहे रूप सनातन। रूप सनातन कैसे रहते हैं यदि यहाँ से कोई मथुरा मठ से वृंदावन से कोई 24 प्रज्ञा में जाए कोई जटाहट चंपक हट जाए कोई कलकत्ता जाए कोई और जगह जहाँ से आप लोगों का जन्म हुआ है जाए तो क्या लोग पूछेंगे काम भर वाले। क्या नाम है चिन्मय
अचिंत।
हाँ अचिंत प्रभु जी सुने हैं जो मथुरा के मठ में रहते हैं, यहाँ के अच्छे लड़के थे, अच्छे घर में जन्म हुआ था। ये तो वो कैसे भजन करते हैं मथुरा वृंदावन में, सुना था जो पहले हरिद्वार में रहते हैं हम मथुरा वृंदावन में रहते हैं कैसे भजन करते हैं। कोई कहा जाए श्री कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी गांव में जन्म हुआ था अच्छे लड़के थे। तो वो आजकल सुनते हैं बड़ा सुभाग्य बड़े भाग्य से मथुरा वृंदावन मिलता है आज वहां पर रहते हैं। सुनते हैं कि उनके कपड़े भी लाल हो गए हैं और दिन रात सेवा करते हैं वैष्णव की। वो लोग कहते हैं मेरे भी कुछ एक खत आया क्या नवीन कृष्ण विद्यालंकार जी मथुरा वृंदावन में रहते हैं कैसे भजन करते हैं। और यदि नजदीक गया तो पता चला कहां, और चंपक खट में। भाई कोई मथुरा वृंदावन से आदमी आया तो पूछा जाए कि वहां पर प्रेमानंद ब्रह्मचारी जी हैं, कैसे कैसे भजन का सुनते, बड़ा बैरागी आदमी है, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, कैसे भजन करते हैं। वैसे ही ये लोग परिषदों पूछते थे तो वृंदावन से जाए, ये स्वाभाविक है। हमारे गांव में जो लोग पूछेंगे कोई जाएगा कैसे हैं, जाए कैसे भजन कर, उसका क्या होगी, हमारा जन्म बेकार का गया तो स्वस्थ जीवन में संसार में, और उनको कितना महान भाग्य है ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का करें। उनकी वहां से आइडिया कैसी होगी, एक आदर्श भक्त। तो वैसे ही वो कह रहे हैं, कह कहां कैसे रहे रूप सनातन, रूप सनातन कैसे रहते हैं, कैसे रहे, कैसे बराज्य, कैसे भजन, कैसे अस्त प्रहर करें कृष्ण भजन, इसे गाना ले जो कैसे वो रहते हैं, कैसा उनका बराज्य है, कैसे भोजन करते हैं, कैसे आठ प्रहर भजन करते हैं। तो ये समझे कि भजन कर रहे हैं जैसे रूप सनातन करते थे, इसीलिए लोग घर छोड़ते हैं। तबे प्रसन्न किया कहे थे भक्तगण, तो वो प्रसन्नता करते वो भक्त लोग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आज दिन पूरी then any bhakta coming from Vrindavan he used to ask them that how Rupa Sanatana is doing bhajan, how his bhairagya is, what is that, how he does 24 hours bhajan. Then that bhakta tells them, unko kehta hai पहले कैसे रहे, कैसे रहते हैं, कोई घर नहीं, कोई हराने के लिए कुटी नहीं, अन्न के रहे घर छोड़ दिया तो फिर घर कैसा, बने जो तो वृक्ष गम, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि सहे, वृंदावन में जितने पेड़ हैं एक एक दिन एक एक रात एक एक पेड़ के नीचे रहते हैं, ममता ना आ जाए ये पेड़ मेरा है। यदि रूप सनातन को कोई घर से निकाल देता है या घर में हम नहीं रहने देते तो उनको कितना आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। इसलिए अब जब कोई नहीं कहा तो लाचार होकर के संग छोड़ करके चले। यदि हम से किसी को घर वालों ने कहा कि घर से निकलो और सारी संपत्ति हड़प ली, हमको दुखी होना चाहिए ना सुखी, अरे मरते समय तो छोड़ना ही है, अभी से छोड़ करके हम भगवान का निश्चिंत रूप में भजन करेंगे या करेंगे। स्त्रियों को भी ऐसा ही होना चाहिए, पुरुषों को भी ऐसा, घर में रहेंगे तो भजन करेंगे घर में, और यदि घर में नहीं भजन होता तो छोड़ देंगे, यदि वो भी नहीं छोड़ा जाता तो यदि कोई सहायक होकर के कृपा करके हमको घर से छुड़ा दे, सबको हटा करके और हमको घर से बाहर कर दे तो वो हमारा गुरु है और पूजनीय है, मन नहीं खराब कर। इसे भगवान हमारे ऊपर में बड़ा दर्दी है, निष्ठुर है, हमको ऐसा करा है, मैं भगवान का भजन करता हूं तो अभी हमको सुखी नहीं बनाता है, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है इस घोर अंधकार रूपी कुएं से निकाल करके यदि बाहर कर दे, ऐसी व्यवस्था कर दे कि संसार का कोई उनको प्रेम न करे, प्रीति न करे, आदर न करे, स्नेह न करे, ये सत्य है। किंतु माया ऐसा करना नहीं दी, अब किसी को ऐसा सहयोग मिलता है तो वो बिल भी आता है, किसी को निकाल दिया ना वैसे अच्छा है हमारा जीवन बेकार का हुआ, सुसाइड कर लेगा, बीज खा लेगा, रेंसिन के कट जाएगा, ऐसा अफवाह प्राप्त हो जाएगा। किंतु यह ठीक नहीं। अनिकेत रहे अनिकेत दुहे बने जो तो वृक्ष बने, एक एक पेड़ के नीचे एक एक बिछाना, बॉक्स और सब चीजें उनके साथ में होती थी, तो बिछाना जरूर हो, मसारी होती होगी, मच्छर दानी, घड़ी, टेबल लैंप, फैन और सब चीजें, पुस्तकें पुस्तकें उनके साथ में रहती तो जरूर होगी। वो सबको लेकर के जाते थे एक पेड़ से नीचे दूसरे पेड़, जो निभा के लिए कुछ दो चार पैसे तो उनके साथ में होते होंगे, कुछ नहीं, अकिंचन अकिंचन लाते थे, अकिंचन निष्किंचन, कोई चीज ले जाने के लिए नहीं होता, यहाँ से वहां जाने के कुछ नहीं, लंगोटी होती थी और कौवा, कौवा मैंने
पानी पीने के लिए मिट्टी का पात्र,
मिट्टी का पात्र, जूता हो गया उसका कोई चुराए नहीं, उसमें मिल गया रोटी डाल ले लिया उसको खा लिया बस बिना नमस्ते, कोई चीज अपना है ही नहीं है कहने के लिए, उसको कहते हैं अकिंचन। मैं दिल्ली में एक जगह प्रसंग में ये बतला रहा था, एक गुप्त वैराग्य है और एक
फलगु वैराग्य,
फलगु वैराग्य, संसार में रहने वाले लोगों को गुप्त वैराग्य रहना चाहिए, फलगु वैराग्य नहीं होना चाहिए, या त्यागी वैष्णवों को फलगु वैराग्य कहते हैं कि ऊपर से वैराग्य दिखलाते हैं, तिलक माला झोली वैराग्य कुछ नहीं है और भीतर से सभी कुछ और भोग की लालसा प्रतीत है, इनको कहते हैं फलगु वैराग्य, इनों का भजन नहीं होता फलगु वैराग्य। और गुप्त वैराग्य वो होते हैं जो संसार की वस्तुओं को कृष्ण को समझ करके कृष्ण की सेवा के लिए व्यवहार करते हैं, अपना प्रसाद कुछ ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं गुप्त वैराग्य। इनमें से प्रभुपाद जी ने कहा या कि भक्ति स्वामी सिंधु में जो लोगों को गुप्त वैराग्य होना चाहिए फलगु वैराग्य, जैसे महाराज अम्बरीश थे, क्या थे प्रहलाद महाराज गुप्त वैराग्य, इस तरह से रहना चाहिए। किंतु ये लिखा हमारे रूप गोस्वामी ने गुप्त वैराग्य किसके लिए, किसके लिए अभी भोगों में आसक्ति है उनकी, खो नहीं पाते उनके लिए, यदि यही बात थी ये सब कुछ युक्त वैराग्य रखो तो रूप गोस्वामी भी युक्त वैराग्य थे ना निष्किंचन थे, वो कुछ लेकर के गए धन संपत्ति इत्यादि तो उनका बहुत विशाल था, तो वो युक्त वैराग्य बनकर के घर में रह करके क्यों नहीं भजन किया और भगवान की सेवा के लिए सब कुछ लगाया, उनको पता नहीं था। ये गोस्वामी जैसे उनके पुत्र थे या भाई के लड़के थे, घर उनका था, उस घर में रहते अचुक्त वैराग्य के साथ में खाते पीते भजन करते, घर छोड़ करके निश्चिंचन होने की क्या जरूरत है। इसलिए यह उन लोगों के लिए है जो अभी छोड़ना नहीं चाहते, कुछ सभी लालसा बनी हुई है अर्थ इत्यादि में संसार में, कोई उसे छोड़ नहीं सकते। ये शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए नहीं है, किसके लिए है, प्रहलाद महाराज जी के लिए, अम्बरीश महाराज जी के लिए और लोगों, प्रहलाद महाराज जी तो परम भागवत है, सब गृहस्थों का आदर्श दिखलाने के लिए मुक्त होकर कभी संसार में थे, यदि संसार में हुए रहो तो ऐसे रहो, भगवत भक्ति के हिम्मत रहे। चैतन्य महाप्रभु निष्किंचन बन करके चले गए उनके पास में, ये मेरी चीज है कभी नहीं। सनातन गोस्वामी जी का भी ऐसा था, कोई कुछ नहीं है, कौन है हमारा क्या है, बस कुछ नहीं मेरे, इसका संस्कृत को सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कविराज गोस्वामी और जो पीछे से ये सब हैं ऐसे कुछ लोग भक्त लोगों को कुछ आदर्श दिखलाने के लिए गृहस्थों के लिए उन्होंने जथा योग्य भोग को ग्रहण करते हुए युक्त वैराग्य का अवलंबन करके संसार से भजन किया या किंतु ये ठीक है यदि संसार का कुछ भी रहेगा तो जरूर उसके लिए चिंता करना जरूर करना ही पड़ेगा जितना भी सुनते हैं जो अद्वैताचार्य के ऊपर में ऋण था और इसके लिए कोई जाकर के महापुरुष से बतलाया
उनके सेवक की
उनके सेवक ने कहा कि अद्वैताचार्य के प्रभु अद्वैताचार्य के ऊपर में ऋण है ये ऋण कैसे और महापुरुष जब पुरी में थे तो उनके भक्त थे शिवानंद सिंह के पांच पुत्र भवानंद के पांच पुत्र थे उसमें बाणीनाथ छोटा था बाणीनाथ या कौन था उसने राजा का जमींदारी का लगान का बहुत कुछ रुपया लाखों रुपए खा लिया और उनको दिया नहीं। जब उनका आदमी गया उनके पास में मांगने के लिए कि भाई जमींदारी का पैसा कहाँ है तो बार बार कहने लगा राजा का लड़का बड़ा ज्ञान बड़ा लड़का राजा का जो राजकुमार युवक था वही राजा होने वाला तो वो थोड़ा सा कुतुला करके और ऐसे ऐसे बात करता था तो कुतुलाने वाले ऐसे ऐसे करते हैं राम तो कुतुला करके बोलता था तो उसने उसको उत्तर दिया पाणिनाथ ने कि घोड़े की तरह में ऊपर में क्या देखता है न कि कुछ ऐसा कहा
घोड़ा जैसा देखता है
घोड़ा जैसा क्या कर रहा घोड़े हिंदी आते हैं ऐसा चीज करके बस वो बिगड़ गया और कहा इसको चंग पचा है चंग माने क्या फांसी पर
नानी के खिला रहता है
अरे भैया उसी को फांसी कर फांसी पचकर है पैसे नीचे सब सूर्य रख दिए हैं और ऊपर में वो आदमी है उसको गिरा दे सूर्य के ऊपर वो नीचे जाते जाते एकदम कट्टर से मर जाए आज ही उसको चंग पचाओ और सिपाही लोग उनको पकड़ करके ले गए चंग पचाने और उसी समय में भक्त लोग दौड़ते हुए पूछा है कि प्रभु जी बचाइए मैं तो वो तो मरा पानी ना रहा रामानंद का छोटा भैया आपका बड़ा सारी भक्त कहते क्यों तो राजा का रुपया खा लिया था और वो लौटाता नहीं है सब तो कहते मैं क्या करूं रुपया ले लेगा खा लेगा डकार लेगा और देगा नहीं मैं क्या करूं मुझे कुछ जरूरत नहीं जब ये अधिक बात करोगे तो मैं अल्लाह अल्लाह चला जाऊंगा हमारे काम में ये सब बातें नहीं आनी चाहिए तो उसे भक्त लोग कह देते आप मत जाइए तो हमने जब मैं जाऊंगा यह बात राजा के कानों पर ये महाप्रभु जी छोड़कर के अल्लाह अल्लाह कर क्यों जा रहे हैं तो पाणिनाथ को आज चंद्र पर चढ़ा रहा है युवराज किस लिए राजा ने कहा किस लिए तो उसने जो रुपया खा लिया था वो दिया नहीं जो राज मांगने गया तो उसको चिढ़ा दिया इसलिए वो आज उसको फांसी पर चढ़ा दिया तो वो क्यों जा रहे हैं कभी हमारे पास में ये बात मत खबर लाओ अच्छा ठीक जाकर के युवराज को बुला लो वो युवराज को बुला रहा है और जो क्या बात है तो ये रुपया नहीं देता है और डका गया और ऐसा करता है और हमको चिढ़ाता भी है हमारा प्रजा को करके तो मैंने उसको पकड़ लिया है डरा लेके हाँ तो बस डरा करके छोड़ देना और उसके पास में 30-40 घोड़े हैं
अच्छे घोड़े हैं
उन घोड़ों को तुम ले लो कम मूल्य अधिक मूल्य से ही देकर के उसका रेडी टूट जाए और घोड़े पर ले लें और उसको मारना किंतु धमका दें ऊपर लोग समझे यहाँ वो ऐसा ही किया छोड़वा और वो बारीनाथ जी महाप्रभु के भक्त हैं, सेवक हैं, किंतु ये जो कारोबार कर रहे हैं, युक्त वैराग्य अवलंबन कर रहे हैं, कुछ न कुछ ये विषय जो है उनको कष्ट देंगे कि नहीं। विशेष करके जिसकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय, उसको कुछ भी रहेगा, ये मेरा है, ये चादर मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये चश्मा मेरा है, कोई भी चीज, तो वह पिंचन नहीं रह सकता है, भजन नहीं कर सकेगा। इसलिए युक्त वैराग्य में और अकिंचन में अंतर है। जब तक अकिंचन आदमी नहीं होगा, तब तक तो महाप्रभु जैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा विशुद्ध प्रेम नहीं देगा। एक दिन उनको ऐसा ही निष्किंचन होना, इस जन्म में हो या दूसरे जन्म, तब तक के लिए कहा गया तुम युक्त वैराग्य होकर के बीचों वगैरह करके बीचों को भोग करते हुए, जब तक तुम्हारे पूर्ण अनर्थ दूर नहीं हो जाए, हृदय की सारी अन्नाभिलाषता दूर न हो जाए, तब तक युक्त वैराग्य का अवलंबन हो, नहीं तो तुम्हारा पेट भी नहीं चलेगा, तुम मर जाएगा। इसलिए युक्त वैराग्य ठीक है, किंतु युक्त वैराग्य से अकिंचन जो वैष्णव है, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, रूप सनातन, अवधूत नित्यानंद प्रभु, इस सब है भजन की दृष्टि से इनको कोई विघ्न बाधा नहीं है, किंतु अनाधिकार में नहीं। अनाधिकार में आज निष्किंचन हो जाओ सब छोड़ करके, तो घर से बक्खा ले जाना पड़ेगा, रुपया कुछ ले जाना पड़ेगा, घर से चुरा करके ले जाएगा, सब कुछ लेकर के जाएगा, भोग बांटना हृदय में लेकर के जाएगा उन लोगों के लिए, इसलिए अधिकार करके फल। ये लोग निष्किंचन है, एक एक वृक्ष के नीचे रह करके एक एक दिन फल खाते क्या है, क्या खाते हैं, पिप्र ग्रह कुल भिक्षा, जो सदाचारी ब्राह्मण है, सदाचारी, कुछ भगवत भक्त हो, दुराचारी नहीं हो, ऐसे सब भक्तों के यहाँ घरों में जाते हैं। घर में फूल भिक्षा मैंने कोई तीन रोटी दो रोटी दे दिया, दो रोटी दे दिया उस पेट भर गया, सूखी रोटी दे दिया उसी से पेट भर गया, और जरूरत नहीं है पानी पी लिया चले, और कोई दिन रात कोई भोजन की चिंता नहीं, किसी चीज की चिंता, बिना नमक की भी रोटी दे दी, या साथ इत्यादि दे दिया, बैठा करके खिला दिया तो खा लिया, और कहा माधुकरी, अधिकांश रूप में माधुकरी करते, क्या दो टुकड़ा तीन टुकड़ा रोटी का दे देते, खाने के बाद में जाते राधे श्याम कहते और मिल जाता रोटी का टुकड़ा, रसोई घर में नहीं बनाते, न जहां रहते दूसरों के घर में दे देते, या माधुकरी। माधुकरी मैंने क्या, जैसे मधु हजारों फूलों से मधु लेकर के अब तक कहीं रहती है, उसको ले लिया, कोई फूल नष्ट होने नहीं पाए, पूरा मधु यदि ले लिया जाए तो फूल नष्ट हो जाएगा, इसे नहीं लेते, कितना जितना जरूरत है, गृहस्थ का कभी कुछ ले लेंगे ऐसा नहीं, उसके घर में बच्चों को खिलाने के बाद में सब लोग खा ले जा करके, उनकी बची हुई यदि रोटी दो एक हो टुकड़ा हो ले आए, किसको कहते हैं मधु, आजकल ऐसा होता है, वो जाकर के कहते हैं सबसे पहला ठाकुर जी का भोग देकर के वो रोटी हमको चाहिए, जिससे टुकड़ी हुई और उसमें सब्जी अथवा उसके साथ में बेसन का क्या बनता है, कड़ी, कड़ी चटक मटकदार सब चीजें होनी चाहिए, ऐसे नहीं लेंगे, ये माधुकरी नहीं, वैसी माधुकरी, और वो भी जब जाएंगे किसी की शकल ना देखे कि कौन देने आया, लड़की आई ना स्त्री आई, लड़कियां स्त्री आई तो आती हैं, उसका रूप भी न दिखे, दे दिया लेकर के चले, ऐसे माधुकरी लोग करते हैं। शुष्क रूपी चना सिवाय भोग परिहरी, जैसे कि कोई काम ना देने आए, भोग की लालसा ना आए, पूरी कचौड़ी लड्डू और रोज परमान्न खीर खाओ, देखो ये काम ना आ जाए, संसार की कामना है। संसार की कामना किसको कहते हैं? स्त्री की कामना, सीधा सा, या स्त्री है तो पुरुष की कामना, इसको संसार की कामना जरूर आएगा ही। इसलिए भोग परिहरी शुक रूटी चना शिवा। अच्छा, तो वो जो चना जो आता है या रोटी घरों में जूठे होने के बाद में माँ धोकरी करेगी, अपने ठाकुर जी को खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, उनके घरों से रोटी जूठा होने के बाद में सब खा लिया, इसके बाद में जो रोटी बनी तो जूठी हुई ना, सख्त कैसी रही, अमनिया रही। मान लिया कि हम यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लगाया था, वहां पर सवा मन चावल बना, 10 किलो दाल बने, अब 10-10 किलो सब्जी बनी, परमान मिलेगा उसमें ठाकुर जी के लिए कटोरी में 1.25 किलो का भोग ले आया और बाकी रह गया, दाल भी कितना एक कटोरी ले और सब्जी। अब वहां जो रह गया वो क्या हुआ? अमनिया है ना, भोग है, क्या है बताओ? बताओ है, वो प्रसाद है ना, प्रसाद। अच्छा हो कि कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी लोगों को ऐसा नहीं हो, मन न लगे तो वो प्रसाद लेकर के फिर उसी में मिला दिया जाए, तो उसी समय जैसे सब लोग हों ये प्रसाद हो सब उसी में मिला दो। और सब तो जो ले लिया गया है पौष्टिक जो बच गया उसको भोगी कहें। जैसे किसी एक काफी फल है बड़ा सा 10 किलो का, उसमें हमने अपने घर में काट करके रख लिया और रखने के बाद में एक टुकड़ा निकाल करके किसी बच्चों को दे दिया, जैसे ठाकुर जी को ले जाओ, ये क्या हुआ? आया समझ में? मैंने क्या कहा? एक काफी फल है, उसमें से हमने अपने घर में बाकी रख लिया और उसमें से एक टुकड़ा 2 खटास 5 खटास अथवा और एक पौआ का काट करके उसमें से ठाकुर जी को दे दिया, तो ये क्या हुआ है? ये भी भोग हो गया, ठाकुर जी को नहीं चलेगा। पहले ठाकुर जी के रख के लिए रख करके दे करके तब फिर रखो तो ये चलेगा। तो वो लोग तो सब अपने खा पी करके जो बच गया उसमें से एक रोटी का टुकड़ा दिया, वो लोग क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? ठाकुर जी को भोग देना चाहिए कि नहीं? हम लोग नहीं देंगे, इसलिए माधुकरी नहीं करते। किंतु जो परमहंस महाभागवत हैं रूप सनातन जैसे, उनका ऐसा कोई विचार ही नहीं है, इससे अतीत है। जो कुछ लाते हैं उनको मिल जाता है, निर्गुण हो जाता है, जो लाते हैं वही भोग देते हैं, उनके लिए ठीक, हम लोगों के लिए नहीं। गुरु जी ने मना किया, जैसे ऐसा मत करो, रोटी पोटी मत मांग करके ले आना, वो बाबा जी जो करते हैं वो करते हैं, इसलिए उसमें गड़बड़ी हो जाती है। घर से आटा ले आना, भोग लगाना ठाकुर जी का, फिर बच्चे करके प्रसाद से। तो वो शुष्क रोटी चना, यहां तक कि सनातन गोस्वामी अपने मदन मोहन को सूखा रोटी दिया। ठाकुर जी ने कहा जो तुमको नमक नहीं मिलता, नमक के साथ में नहीं दे सकता, प्रभु नमक तो मिल जाएगा किंतु आपकी जो जीवा है बढ़ती जाएगी, और कल आप मक्खन मांगेंगे, घी मांगेंगे, मिट्टी मांगेंगे, हम कहां से दे सकें? अरे जो सोदा बैया जैसी रानी, लाखों गायें, 9 लाख गाय, और वो तुमको नहीं खिला दो, उसके समय में भी तुम दूसरों के घर से चोरी करके खा करके पेट भरता था, मैं तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, आप अपने लिए अलग से व्यवस्था कर लीजिए, हमसे नहीं। ये प्रेममय सेवा है, बहुत ऊंची। इस प्रकार से सारे भोगों को छोड़ करके रह करके भजन, तब आत्मज्ञान होता है, कृष्ण की स्तुति और भक्ति होती है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी तो हम लोग अपने कपड़े का इस्त्री भी कर लेते हैं, इसलिए क्या कपड़ा धोती कमीज कुर्ता फैंसी फैंसी करते थे, उनको इतना उनको समय होगा ये सब करने का था ही नहीं, तो इसी किस कर करें। जन्नवा देवी होंगी जो राधा कुंड में भजन करने आई, कैसे रहती होंगी उस समय बंद जंगल में अकेले, किस रूप में रहती होंगी, ये सब का विचार करके लोग भजन करें। कारवा पात्र कारवा मात्र हाथे छिड़ाकांखा बहिर्वा से कारवा पात्र मिट्टी का पात्र, सुइया जिसको कर सुइया जानती है ऐसा ऊपर में पकड़ने के लिए वो रहता है और उसमें एक लंबा सा ऐसा उसी से पानी निकलता है,
गंगा
सागर भी ऐसा करता है, करुआ ना करुआ भी
कमंडल
कमंडल जैसा मिट्टी का उसे पानी पी रहे हैं और दूसरा कोई उसको नहीं, मत ब्राह्मण लोग या व्यक्ति लोग उसको नहीं छुएंगे, क्यों वो कुछ हो गया, हम मिट्टी का पात्र लेकर के बेचे वो बिके जाते हो कोई चुराया जाती है, वो केवल पानी पीने के लिए वो, और उसमें कोई यदि कभी गया भिक्षा मांगने के लिए कोई तरल पदार्थ दे दिया तो दाल है सब्जी है ले लिया, और ओढ़ने के लिए ठंडी दिनों में कंथा वो भी छिड़ा बहिर्वास, छिड़ा मैंने
फटा
फटा दो, कोई मैंने ऐसा सुंदर नहीं फटे हुए उपेक्षित कपड़े जो कोई गृह पहन रहा है उसे मांग करके ले लिया, बस इस तरह से छिड़ा बहिर्वास। और वन जंगल में रहने से भी उनके पास से चोर डकैत किस लिए आएंगे, इसलिए वन में रह सकते थे, हम लोग नहीं रह सकते। कृष्ण कथा दिन रात कृष्ण की कथा, यदि रूप सनातन कहीं मिल जाते एक पेड़ के नीचे रात भर कृष्ण कथा होती रहती, कृष्ण अकेले हैं तो स्वयं नाम कर रहे और नाम करते हुए प्रहलाद महाराज की तरफ में कभी नृत्य कभी रोना कभी जमीन पर लोटना पोतना उसे प्रमत कर रहे, अष्ट प्रहार कृष्ण हरि आठों पार कृष्ण हरि, आठों पार माने 24 घंटा, चार दंड सहने, चार दंड माने एक दंड में कितना मिनट,
120 मिनट,
चार दंड सहने, चार दंड माने एक दंड में 24 मिनट,
8 मिनट
बस उतना ही सोते थे, बाकी जब तक के हरिनाम कीर्तन इत्यादि कर उसमें ग्रंथ लिखना, भक्त निर्वाणी सिंधु जैसे सब ग्रंथ लिखे पत्ते जलाकर या दिन में लिखते रात में भजन करते थे, साथ सब समय जगकर खाने की चिंता नहीं, बस एक बार जो खा लिया माधुकरी नाम नाम संकीर्तन प्रेमित केहो न है कोनो दिन, कभी कभी वो सोना भी बंद है जो चार दंड सोते थे वो भी बंद दिन रात इसी में लगे रहते, कभी भक्ति शास्त्र करे नहीं, कभी भक्ति शास्त्र चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंता, कभी चैतन्य महाप्रभु जी की कथाएं सुनते और उसी को लिखते और उसी की चिंता करते, क्या चैतन्य महाप्रभु की कथाएं रथ यात्रा का प्रसंग, कभी राय रामानंद का प्रसंग, कभी प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का प्रसंग, कभी सार्वभौमाचार्य का प्रसंग, दिन रात महाप्रभु की, कभी दक्षिण प्रदेश में जा रहे हैं कुछ भी प्रमिला और महाप्रभु जी का स्पर्श पाकर के उसका कुछ स्वरूप दूर हो गया, परम भक्त हो गया, कभी विद्या हरिदास का तुलसी कथा है इत्यादि सब चिंतन करते थे, महाप्रभु जी ने कैसे रघुनाथ दास पर कृपा की ये कर, यही कथा सुनी महान से महासुख, इसको सुन करके रामानंद सर्व दामोदर इत्यादि को बहुत आनंद होता है। चैतन्य कृपा जाए काहे की बीच में चैतन्य महाप्रभु के कृपा जिस पर है उसके कोई भी विचित्र बात जिसमें का बात आश्चर्यजनक बात नहीं है, वो सब प्रकार से भजन कर सकता है। तो ये महाप्रभु के कृपा पात्र ये लोग रूप सनातन चैतन्य कृपा रूप लिखिया चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा इन पर हुई। रूप गोस्वामी पर उन्होंने स्वयं लिखा है भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथे मंगलाचरण, मंगलाचरण में उन्होंने खुद लिखा है श्री व्यक्त प्रेरणिया प्रवृत्ति अम्बरा स्वरूपो तस्य हरे पद कमलम बंदे चैतन्य देव। मैं चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमलों की वंदना कर वो साक्षात हरि है कृष्ण है जिनकी प्रेरणा से हृदय में प्रेरणा होने से प्रवृत्ति को हम बरात रूप में मैं भक्त स्वामी सिंधु ने को लिखने के लिए प्रवर्तित किया सदा ने उन्होंने प्रेरणा दी शक्ति की स्फूर्ति की। मैं बरात रूप अभी बहुत कुछ पदार्थ हूँ कोई शक्ति नहीं कोई विद्या नहीं अत्यंत सुप्त भक्ति होने पर भी जिनकी कृपा से ऐसे महान ग्रंथ को लिखने में प्रवर्तित किया चैतन्य महापुरुष की कृपा उन्होंने लिखा तो 10 दिन प्रयागे रह जाए का विजय शक्ति संख्या। इस प्रकार से महाप्रभु जी वृंदावन से लौटते हुए 10 दिन तक प्रयाग में रहे शुरू के शिक्षा दी गौर शक्ति संख्या शिक्षा दिया शक्ति संचालित करके अनुभूति के लिए हमने कहा जो सत्य बोलो बिना शक्ति के हम सत्य बोल नहीं सकते जब तक ऐसी दृढ़ता शक्ति न हो इन्हें सत्य बोलने के लिए शक्ति चाहिए सभी लोग नहीं बोल सकते। इसी तरह से महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया क्या शिक्षा दिया भक्ति स्वामी जी ने जो कुछ बड़ा वर्णन किया गया अन्नाभिलाषिका से लेकर के अंत तक सुजल निर्मणि में और ग्रंथों में ये शिक्षाएं हैं। जैसे 1 लाख हरि नाम करना चाहिए ये शिक्षा हमने दिया न मैं ही करता हूँ न आप ही लेकर इसमें शक्ति संचरित की जरूरत है इसके लिए शक्ति हो तब तो करेंगे ऐसा जो सुना वो बिना भगवान की कृपा से नहीं होगा। हम लोगों का टारगेट यह रहेगा उद्देश्य जैसा ही भजन करें किंतु होना बड़ा कठिन। ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत जैसा मैं हूँ क्या इसके जैसा चतुश्लोकी भागवत मैं जैसा हूँ हमारा स्वरूप कैसा है हमारा गुण कैसा है मैंने तुमको सुनाया तुम धारण नहीं कर सका। कृष्ण काले हैं श्याम जैसे काले हैं विद्युत जैसा उनका पीताम्बर फहरा आ रहा अगर वो पसंदर मुरली बिराज तो क्या कहते हैं काले कैसा अनुभूति है ये मेरी कृपा से समझ गई कि भगवान कहते हैं मैं कैसा हमारा तत्व क्या है बड़ी भक्ति किसको करते हैं प्रेमा भक्ति किसको करते हैं ये कैसे ये सब कुछ करते हैं ये हमारी कृपा से तुमको अनुभूति हो जाए ऐसा ही भूल जाए ये सबका अध्ययन करना चाहिए तो बिना अनुग्रह के ये सब चीजें नहीं होगी। महाप्रभु जी ने रूप को सुनाया सब भक्ति की बात है प्रेमा भक्ति की बात है जैसे राग किसको कहते हैं राग मैंने रागात्मिक जनों में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में जो अत्यंत आसक्ति होती है आसक्ति युक्त जो प्रेम होता है उसको कहते हैं राग। हम कैसे समझेंगे गोपियों में कैसा राग है कृष्ण के प्रति आज मेरी कृपा से तुम अनुभव करो तो अनुभव कैसे किया जैसा कि कृष्ण उनके प्रति गोपियां कैसे अनुराग कर रही और उनके कैसे कैसे भाव आ रहे बस समझो। ऐसे ही उन्होंने कहा कि रूपये शिक्षा दिल सब कुछ शुरू को शामिल को शक्ति संचार करके अब तक सारी शिक्षाएं दी प्रभु का सुनो भक्ति लक्षण शुक्र पे कहीं भी साथ ना जाएगा। देखो रूप में भक्ति भक्ति का नहीं भक्ति और रस का लक्षण कर रहा हूं। भक्ति रस का लक्षण मैंने क्या भाव किसको कहते हैं अनुभाव किसको कहते हैं भाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी ये सब क्या है अर्थसात्विक क्या है विभाव किसको कहते हैं अलंबन किसको कहते हैं उद्दीपन किसको कहते हैं कैसे भक्ति होती है फिर भक्ति के एक एक अंग कैसा होता है फिर मिलने पर रस कैसा होता है जो पहले जगत में नहीं था भक्ति थी किंतु भक्ति रस नहीं था ये चैतन्य महाप्रभु ने आकृति जगत को दिया है। तो सुनरू भक्ति रस भक्ति रस का लक्षण सुन जैसे भक्ति के लिए विभाव होना चाहिए एक तो भाव होना चाहिए भाव माने क्या हमारे अंदर में कृष्ण को सेवा करने की कैसी भावना है अब उसके लिए जरूरत है विभाव। विभाव दो प्रकार का एक अवलंबन और एक
दीपन
अवलंबन भी दो प्रकार का एक विषय और कृष्ण प्रेम के विषय है जो सुधा मैया बात्सल्य रस के बात्सल्य रस के आश्रय यदि यशोदा मैया जैसा हमारा भाव है तो यशोदा मैया कैसे कृष्ण को पालन करती है कैसे प्रयास करती है ये जानने की उत्पन्न है। तो यशोदा मैया का चरित्र उनका गुण उनका रूप उनकी उम्र कृष्ण के प्रति कैसा उनका अनुराग है कैसे कैसे उनकी भावनाएं होती हैं कभी बिगड़ती हैं कभी प्यार करती हैं कभी उनको बांधती भी इस तरह से सभी पर विचार करके उसके भाव अपने से चले जाए इसे ये सबका जरूरत है। कैसे कैसे भाव होते हैं इसके लिए संचारी भाव कभी कभी अर्थसात्विक भाव संचारी माने स्थायी भाव की ओर में जो भाव बहते हुए और प्रेम रूपी समुद्र को उड़ाल तरंगों से भर देते हैं ये सब अनुभाव अनुभाव हमारे हृदय में ये सत्व के जो भाव है सत्व में उसको ये अवबोधक है बतलाने वाले सूचक है जैसे कृष्ण के विरह में कोई तड़प रहा हो जिसकी आत्मा तो शरीर क्या करेगा उसकी आंखों से भी आंसू चूसे यदि कृष्ण को देख करके हंसी आ रही तो ये शरीर से भी किसी को मालूम नहीं कि क्यों हंस रहा है क्यों रो रहा है तो ये सब चीजें हैं राजू चाचा ये हमारी कृपा से समझाओ सब शांत अवस्था ये सभी चीजें जो बताए भाव विभाव अनुभाव सात्विक दासरसता सत्सरसता बात्सल्य रसता एक एक करके बताया विशेष करके मधुर रसता अलग से बताया। मैं कुछ रूप में कहता हूं विस्तार ना जाए पर विस्तार रूप में नहीं बतलाऊ तुम इसी से समझ पारावार सुन गभीर भक्ति रस भक्ति रस अमृत सिंधु अथवा तो भक्ति रस सिंधु कैसा है भक्ति रस एक दुष्पार्य महासागर क्या इसे करोड़ों गुण आदि अंतहीन एक अपार वो भक्ति रस है जिसमें कृष्ण जी डूब जाते हैं ऐसा वो भक्ति रस अमृत है सिंधु पारावार सिंधु तुम्हार चखाई से तार एक कही बनी उसका चखाने के लिए एक बिंदु अपार संसार तो ये भक्ति रस से एक बुंद मैं ले रहा और तुमको चखा रहा हूं और इसे अनुमान करने के लिए कहता है जैसा कोई सुंदर कुछ बनाते हैं शरबत या रस बनाते हैं तो बना करके देखते हैं एक चम्मच ले लिया उसको मुख में देखा देखकर कहते ये कैसा है तो फिर समझ लेंगे ये ऐसा है चार मन की कड़ाही में चावल पक रहा है और एक उसमें से चावल उठाया और उसको देखा कि ये सिद्ध हुआ कि नहीं यदि सिद्ध हो गया तो समझो क्या सभी सिद्ध होगा। इसी तरह से महाप्रभु जी ने उनको अपने नृसिंह सिंधु का सब कुछ आपका एक बिंदु चखाया, उसी का यहाँ पर वर्णन है। हम लोग इनको सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, कैसे हमको भी मिले इसके लिए लालायित होंगे, तब भक्ति होगी। तब सब जितनी चेष्टाएं सब छोड़ करके संसार में रहें या बाहर में रहें, गृहस्थ हो चाहे त्यागी, दोनों का यही सब सत्य है। आज ये सब रहे बंशा बल पत्र में बात।